संपूर्ण वर्षे के अधिकारी उत्तराधिकारी। तो अब हम देखें क्या मैं श्रीमत प्रमाण चलता हूं, श्रीमत में कहीं मनमत तो नहीं मिक्स करता हूं। तो एक सुझाव है कि आप कम से कम 10 बातें मुख्य मुख्य श्रीमत की 10 बातें नोट करेंगे और रोज रात में सोने के पहले एक एक श्रीमत को सामने लाते हुए अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहां तक श्रीमत प्रमाण चलता हूं अथवा मेरी दिनचर्या कहां तक श्रीमत प्रमाण है। और यदि हम अपनी दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण बनाने में पूरी तरह से सफल हो गए तो हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। जो हम कहते हैं ना योग में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो कारण ही होता है कि कुछ ना कुछ श्रीमत का उल्लंघन। तो पहली बात, अगर वारिस बनना है तो श्रीमत प्रमाण दिनचर्या। प्रश्न में क्या बाबा ने बोला, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। कौन से? पहला कौन सा वारिस? एक है समर्पित बच्चे। क्या निशानी बाबा ने बताई? जो डायरेक्ट माता पिता के द्वारा परवरिश ले रहे हैं लेकिन उनके कर्मों की गति बहुत गुही गति है। तो इसके ऊपर मेरा चिंतन चला, कर्मों की गुही गति क्या है? समर्पित बच्चे जो हैं उनके तो बहुत ही अच्छे कर्म हैं जिसके आधार से वो समर्पित हुए। तो बाबा ने आज की मुरली में ही बता दी, आज की मुरली में ही है कि देखो ये हमारा भाग्य है कि हम समर्पित हैं, लेकिन समर्पित होने के बाद यदि हम व्यर्थ में रहते हैं, कुसंग में रहते हैं, अपने समय स्वास्थ्य संकल्प के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो कर्मों की गुही गति है ना। कि इतना ऊंचा स्थान, इतना ऊंचा संग, इतनी ऊंची प्राप्ति करने के बाद यदि हमने अपने समय के महत्व को नहीं समझा, खाने पीने सोने में समय को बर्बाद किया। मुझे याद आ रहा है कि एक बार बड़ी दादी ने सुनाया कि बड़ी दादी ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा कुछ भाई बहने ऐसे हैं कि उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए, है ना, सुख सुविधा के हर प्रकार के साधन चाहिए, लेकिन सेवा से जी चुराते हैं, संकल्प चलता है कि उनका क्या भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है। दादी ने कहा अच्छी बात है? बाबा ने कहा हाँ अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि वो एक जन्म में खा पी रहे हैं, सो रहे हैं और 21 जन्म तुम्हारे नौकर चाकर बनेंगे। तो इतने सस्ते नौकर कभी मिलेंगे? तो कभी भी दूसरे को नहीं देखना कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं और दूसरा टाइम पास कर रहा है। नहीं, सब अपना अपना भाग्य बना रहे हैं, जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, दूसरे कौन से हैं वारिस? जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी बनकर के रहते हैं। एक है गृहस्थी और एक है ट्रस्टी। आप कौन से हैं? दो चार लोग ही ट्रस्टी बोल रहे हैं, और बाकी लोगों का क्या विचार है? सभी है ना ट्रस्टी? क्या हैं आप? हाँ, गृहस्थी नहीं समझना, सदा अपने आप को ट्रस्टी समझना। ट्रस्टी समझेंगे तो क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे। और गृहस्थी समझेंगे तो भारी रहेंगे, बोझ रहेगा। तो क्या पसंद है, बोझ रखना या हल्के रहना? हल्के रहना। हल्के रहना है तो क्या समझना पड़ेगा? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी माना सारा बोझ बाबा को देकर के निश्चिंत रहना, बेफिक्र रहना। कई बार बाबा कहते बच्चे मेहनत तो करते आए, 63 जन्म से मेहनत करते आए, बोझ उठाते आए, अब तो दे दो मुझे बोझ, बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे, परमात्म बच्चे, ईश्वरीय बच्चे और बोझ, परमात्म बच्चे और चिंता, उदास। तो बाबा कहते हैं सारे बोझ मुझे दे करके हल्के रहो, लाइट रहो। और ट्रस्टी माना सब कुछ तेरा। क्या है ट्रस्टी माना? सब कुछ या कुछ मेरा भी, है ना? हम कहते तो आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, हे भगवान तन मन धन सब कुछ तेरा, और घर आते स्लोगन चेंज हो जाता है। तो हमने बाबा को कहा बाबा सब कुछ तेरा, तो क्या हम सचमुच तेरा करके चल रहे हैं या कभी कभी मेरा पना जाता है? तो ट्रस्टी बन करके रहना है, है ना? किसी भी बात में मेरापन ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसे, बाबा ने कहा ट्रस्टी बनने में थोड़ा मेहनत तो लगती है, बाबा को भी पता है, लेकिन आगे क्या कहा बाबा ने, अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, पूरी तरह से ममत्व निकल जाए तो क्या मिल जाएगा? संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, वे बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो बनना है संपूर्ण वर्षे के अधिकारी या जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हैं? संपूर्ण वर्षा लेना है ना। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा जीते जी क्या करना है, इस देह से ममत्व निकाल करके पूरा ही ट्रस्टी बनना है, चाहे देह है, संबंध है, पदार्थ है, साध, किसी भी चीज में हमारी बुद्धि ना जाए। और अगर जाती है, कई बार हम कहते हैं हम पूरा नष्टो मोहा हैं, हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाती है, चलो अच्छा हम नष्टो मोहा हैं, संबंध में बुद्धि नहीं जाती, अगर छोटी सी भी चीज में जाती है, कोई भी चीज छोटी सी है ना, कोई साधन सुविधा, कोई वस्तु, तो अंत में वही चीज याद आएगी और बाबा की याद भूल जाएगी। तो ऐसा हम अपने सामने लाएं, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो हम छिपा करके रखे हैं जिसमें हमारी बुद्धि बार बार जाती है, और अगर जाती है तो हमें खुद के टीचर बन करके खुद को समझाना है, ए आत्मा इस चीज में तुम्हारी बुद्धि बार बार जाती है तो याद रखो यही चीज तुम्हें अंत में याद आएगी और तुम्हें धोखा देगी, इसलिए समझदारी है कि उससे बुद्धि निकाल लेना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं? हाँ याद है आप सबको, बहुत ध्यान से मुरली सुना है, हाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं लेकिन अच्छी बात है, श्रेय अच्छा मौन में है ना, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? मुरली की पॉइंट बोल सकते हैं व्यर्थ से और पूरी तरह मौन में रहेंगे, बाकी मुरली की पॉइंट सुना सकते हैं। हाँ बाबा की याद, और दूसरी बात बहुत सुंदर, इससे लगता है आप लोग ध्यान से मुरली सुनते हैं, बाबा की याद और देही अभिमानी बनकर के रहना। क्यों कहा सबसे श्रेष्ठ कर्म है? क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो न केवल हम अपना कल्याण करते हैं लेकिन सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं, प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करते हैं, वायुमंडल को पावन बनाने की सेवा करते हैं, और यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। और आगे बाबा ने क्या कहा, किसी को क्या नहीं देना है, दुख नहीं देना है, तो क्या देना है, सुख देना है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो आपको याद होगा गुलजार दादी बहुत सुंदर क्लास में हमेशा बताया करती थी कि ना दुख दो ना दुख। तो दादी कहती आधा बात तो हमें याद रहता है कि हाँ भाई बाबा ने कहा है किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन आधा स्लोगन हम भूल जाते हैं, ले लेते हैं बड़ी जल्दी। तो देना भी है, देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं है, सुखदाई बन करके रहना है, क्योंकि हम किसके संतान हैं? सुख के सागर की संतान हैं। और हम सुख के सागर की संतान यदि हम दुख देंगे, दुखी रहेंगे, तो कोई कहेगा, कोई मानेगा सुख के सागर की संतान है आप? नहीं मानेगा ना। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, किसी भी चीज में क्या नहीं रखनी है, लोभ नहीं रखनी है। हाँ, क्यों? हम बाबा के बच्चे हैं, हम दाता के बच्चे हैं, हम भरपूर आत्माएं हैं। हाँ, किसी चीज की कमी है क्या? नहीं कमी है ना। कौन मिला है, कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है, वो हमारी बुद्धि में रहेगी तो हमारी दृष्टि किसी के चीजों पर, किसी वस्तु पर, वैभव पर, साधन पर, व्यक्ति पर नहीं जाएगी। तो सदा याद रखना है हम दाता के बच्चे, देने वाले, देवता बनने वाले हैं। और आगे बाबा ने क्या कहा, अपने आप में क्या देखना है, क्या पोता मिल चेक करना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या बनना, संपूर्ण निर्विकारी। यदि किसी भी विकार का अंश होगा, एक अंश, तो क्या करेगा वो अंश, पूरा उसकी वंशावली आ जाएगी, वंश सहित आ जाएगा। इसलिए अंश सहित खत्म करना है। हम ये न सोचे कि तो छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सोचते हैं तो हमने क्या किया, वो अंश को पाल करके रखा। तो बाबा ने कहा है कि अंत में वही छोटा सा अंश बड़े रूप में होगा और वही चीज आपको धोखा देगा। इसलिए अंश वंश सहित खत्म कर देना है। और बाबा ने कहा दे अभिमान को छोड़ करके क्या करना है, बाबा की याद में रहने का श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा की याद में रहना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे द्वारा प्योर वाइब्रेशंस फैलते हैं। आज सारी दुनिया की आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं निगेटिव सोचती हैं, तो वो निगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं। और एक बाबा का बच्चा बाबा की याद में प्योर वाइब्रेशंस फैलाता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा, और वरदान में क्या कहा बाबा ने, क्या था वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। तो सबसे बड़ी शिक्षा है अपने क्षमा स्वरूप, शिक्षा क्षमा स्वरूप के द्वारा शिक्षा देना, कैसा भी आत्मा हो। लेकिन हमारे अंदर की जो क्षमा भावना, क्षमा भावना माना शुभ भावना, शुभ कामना। और शुभ भावना का भी प्रैक्टिकल सबूत है सहयोग की भावना। लेकिन कई बार हम कहते हैं हम तो शुभ भावना रखते रखते थक गए, ये सामने वाला ऐसा पत्थर बुद्धि है कि हमारी शुभ भावना का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है, ये तो बदलता ही नहीं है। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं वैसे ही अपने सामने एक निगेटिव संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हैं। वो बदलने को तो आता है, बाबा के महावाक्य हैं कि यदि आपके अंदर शुभ भावना है तो रावण जैसा व्यक्ति भी आपके सामने एक दिन आकर के झुकेगा, परिवर्तन होगा, माफी मांगेगा। लेकिन अगर एक बार भी हमने संकल्प ये लाया कि ये तो पत्थर बुद्धि है, हमारी शुभ भावना का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो फिर वो नहीं बदलने वाला है। तो सदा हमारी शुभ भावना बनी रहे, अवश्य वो परिवर्तन होगा ही। हो नहीं सकता कि हम शुभ भावना रखें और सामने वाला परिवर्तन ना हो। आज भी बाबा ने कहा, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। और शुभ भावना के द्वारा मास्टर क्षमा के सागर बन करके आप किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। जो व्यक्ति बोल से नहीं बदलता, वो आपकी शुभ भावना से अवश्य परिवर्तन होगा। स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, स्वयं के प्रिय और सबके प्रिय कौन लगते हैं, जो सदा खुशहाल रहते हैं, है ना। तो खुश रहना ये सबसे बड़ी सेवा है। और अगर हमारे अंदर खुशी नहीं रहती, तो हम कितना भी दूसरों को ज्ञान सुनाएं और खुश नहीं है तो सामने वाला क्या कहेगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, चलो, तो सामने वाला कहेगा इनके चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं, कह रहे हैं हमें भगवान मिला है, मानेगा नहीं मानेगा। और आप खुश रहते हैं तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपसे पूछेगा आप बहुत खुश रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप जहां जाते हैं मुझे भी ले चलो वहां, तो वो खुद आपसे पूछेगा। तो खुश रहना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो आज ये हमने मुरली रिवीजन किया, अब इससे हम कुछ सीखेंगे। न केवल रिवीजन, हमारा उद्देश्य केवल रिवीजन करने का नहीं होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में कुछ करें। तो आज की मुरली से सारा दिन याद रखेंगे, मैं मास्टर क्षमा का सागर हूं, आज मुझे सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना ही रखनी है। दूसरी बात, धारणा में संकल्प कर लें, खुश रहना है और सबको खुश करना है। इसी के ऊपर चिंतन भी करेंगे, बहुत जरूरी होता है चिंतन करना। जब हम ज्ञान का एक पॉइंट रोज की मुरली से एक पॉइंट लेकर के उस पर चिंतन करते हैं, तो वो हमारा अपना बन जाता है, वो जीवन में कभी भूलता नहीं है, और योग बहुत सहज हो जाता है। तो इसी पर चिंतन भी करेंगे, खुश कौन रह सकता है और खुशी गुम होने के कारण क्या है, कौन सी बातें हमारी खुशी गुम कर देते हैं, और जो खुश रहते हैं उनकी क्या क्या निशानी दिखाई पड़ेगी। तो आप सदा ही खुश रहें, मास्टर क्षमा के सागर बने, सभी के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना बनी रहे, शुभ भावना बनी रहे, सदा ट्रस्टी बन करके रहें, सदा श्रीमत पर चलते रहें, वारिस बने और बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बने। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति। तो अभी हम 10 मिनट के लिए बाबा की याद में हम कमेंट्री से 10 मिनट योग करेंगे, और बाकी दिल्ली, नोएडा और जो भी हैं वो बैठेंगे। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे, 10 मिनट के लिए हम कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे। ओम शांति। सभी अपने आप को मस्तक के मध्य देखेंगे। मैं चमकता हुआ बहुत तेजोमय सितारा, फील करेंगे मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत तेजोमय सितारा मस्तक के मध्य चमक रही हूं। चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस फील करेंगे। मैं बहुत बहुत पवित्र, संपूर्ण पवित्र, परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य हूं। मैं सूर्य के समान दमक रहा हूं। इस देह में पवित्रता का अवतार हूं। मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा, अनंत शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं शक्ति पुंज हूं। प्रकाश पुंज हूं। फील करेंगे मैं सर्वशक्तिवान से कंबाइंड सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणों के नीचे सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे चारों ओर अष्ट शक्तियों की किरणें फैल रही है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख ज्ञान सूर्य बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही है। सर्व शक्तियों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। फील करेंगे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं बाप समान शक्तिशाली अवस्था का अनुभव कर रही हूं। जो शक्तियां शिव बाबा में वही मुझ में मैं बाप समान हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य बन करके तेजस्वी किरणें फैलाते हुए धीरे धीरे आती हूं और इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेती हूं। मुझसे चारों ओर दिव्य तेज फैल रहा है। अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।